ये सजा है। अमीर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से दुश्मनी और हुसैन इब्ने अली का साथ देने की। हंजला इब्ने मरवा हमदानी जलती धूप में हलाक होगा ताकि कूफियों के लिए इबरत बन जाए। दोपहर की धूप इसे सुस्त कर देगी ताकि इसके कदम लड़खड़ा जाएं और इसकी जान निकल जाए और कीड़ों की खुराक बन जाए। और फिर इसका जसद 3 दिन दौर पर लटका रहेगा ताकि सब जान जाएं कि अमीर अपने दुश्मन के साथ क्या सलूक करते हैं। जो कोई भी हुसैन के चाहने वालों के राज फाश करेगा उसका खंदा पेशानी और सुनहरे सिक्कों से इस्तकबाल किया जाएगा। अमीर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जिस पर मेरी जान कुर्बान है।
खामोश हो जाओ। तुम और तुम्हारे आदमी 3 लोगों को नहीं पकड़ सके। हंजला मौत का मुस्तहिक था और भाग जाना एक नाकाबिले बख्शिश गुनाह है।
अगर तलाफी की मोहलत दे दे तो
सिर्फ हंजला चाहिए और वो 3 अजनबी मर्द और कुछ नहीं।
जो हुक्म।
कल सुबह ये 4 अफराद दार पे लटकाए जाएंगे।
अमीर उनमें से एक जख्मी हो गया था, मैंने खुद उसे 3 मारा था, हमारे चुंगर से निकल नहीं सकता।
हुक्म वही है जो मैं दे चुका।
लेकिन अमीर, मैंने तो पहले अपनी खिदमत गुजारी अमीर पर साबित कर दी है, क्या नहीं की?
हाँ, मुझे याद है मक्कार भेड़िये। तुम वही उमर इब्ने हज्जाज जुबैदी हो जिसने अपने दामाद हानी इब्ने उरवा को मुस्लिम इब्ने अकील के हमराह हमारे चुंगल में फंसा दिया। तो फिर तुम्हें बखूबी पता होगा कि कूफा तन परवरी और अय्याशी का शहर नहीं, ये जानवरों का जंगल है। जानवरों का जंगल। अगर तुम शेर रहे तो लोग तुम्हारे ताबेदार रहेंगे, और अगर भेड़िए रहे तो फाड़ खाने वाले दरिंदे। मैं इस जंगल का शेर बनने आया हूं, तो फिर कोई शिकार मेरे जंगल से निकलना नहीं चाहिए। अब जाओ।
जो हुक्म अमीर। चचाजाद भाई हंसला कहाँ है?
मुझे नहीं पता।
नहीं पता? इसे दारुल अमारा ले चलो, वहीं पर मुंह खोलो।
चलो जल्दी चलो।
बर्दाश्त करो, हौसला दो खुद को।
तीन औरतें एक भी मर्द के बगैर। कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो?
हमला औरत को किसके पास ले जाना चाहिए उमर बिन हज्जाज, सिवाय दाइया के?
अस्मा, मेरे अजीज दोस्त हाजिम इब्ने कैस की बीवी, तुम्हें तो अपना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।
मतलब कूफा इस कदर नामन हो गया है?
नहीं नहीं नहीं, हमारे होते हुए हर जगह अमन अमान ही रहेगा। चलो रुको। हम तीन सिया पोश आदमियों की तलाश में जो कूफे से भागे हैं, तुम लोगों ने उन्हें देखा है?
क्या तुम उन तीन सिया पोशों की तलाश में हो? हाँ हाँ, वो लोग नहर से गुजरकर बादिया की तरफ निकल गए।
चलो
के मोहल्ले में कुरान को क्या हो गया है जो बेवा औरतों की तरह घर में बैठ गया है और शहर के हालात से बिल्कुल बेखबर है। कूफियों पे कौन सी आफत आ गई है कि अब्दुल रहमान तक अपने गिरेबान में मुंह छुपा चुका है? क्या वाकई तुम्हारी मर्दानगी इस दियार में बोरिया बिस्तर लपेट चुकी है?
जब फितने का गर्द गुबार उठे तो उस गुबार के थम जाने तक रुके रहना चाहिए, फिर हकीकत तक रसाई हो।
तुम हमेशा की तरह जुमले तो बहुत अच्छे बोलते हो, लेकिन अगर हकीकत रोजे रोशन की तरह वाजे हो तो क्या?
तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? तलवार हाथ में लेकर अकेला इब्ने मरजान के सामने खड़ा हो जाऊं? क्या नहीं देखा कि मुस्लिम इब्ने अकील और हानी इब्ने उरवा के साथ क्या सुलूक किया गया? बखुदा फिर से दौलत, ताकत और धोखे ने कूफियों पर गलबा कर लिया है। अगर सारे के सारे रास्ते बंद हो तो फिर आखिर हम कर ही क्या सकते हैं?
अगर फितना खड़ा हो जाए तो क्या बेखबरी के गिरेबान में मुंह छुपा लेना चाहिए?
कूफे में रोजाना कोई फितना और कोई खबर होती है।
ना उम्मीदी ना काबिले बख्शिश गुना है अब्दुल रहमान, वो हमेशा अपने बंदों के लिए कोई रास्ता जरूर छोड़ता है अगर बंदे चश्मे बसीरत रखते हों।
फितने ने कूफियों की आंखें अंधी कर दी हैं।
जाओ उस बेजवान जानवर को पानी पिला दो, अगर घर का तबेला भी शहर कूफा की तरह चालाकी और फितने की जद में ना आया हो तो।
तुम्हारे ताने जान लेवा है साजदा। अब्दुल रहमान
मेरी मदद करो।
हंजला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त मैदान में तार पे लटका होना चाहिए था। यहाँ कैसे आए हो भाई? तुम कैसे यहाँ?
अगर तुम और तुम्हारे दोस्तों की हिमायत न होती तो बेशक मैं अब तक मर चुका होता।
तुम ढके छुपे अंदाज में क्यों बात कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई?
क्या तुम लोग नहीं थे जो
कैसी बात कर रहे हो?
वही तीन सिया पोच घुड़सवार जिन्होंने चमकती धूप में तेज धार छुरी की मान मेरी गर्दन से रस्सी उतार कर मुझे इब्ने हज्जाज से निजात दिलाई।
सिपाहियों ने तुम्हारा पीछा न कर लिया हो?
पता नहीं।
छुप जाओ, मैं देखता हूं कौन है। क्या हो गया हाजिम?
तुम्हें नहीं पता क्या हो गया है?
क्या मतलब है तुम्हारा?
हंसल्ला भाग गया है और तुम्हें कुछ नहीं पता? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं, गली कूचों में घोड़े दौड़ा रहे हैं और तुम कहते हो क्या हो गया? जरा अपने इर्द गिर्द की भी खबर रखा करो। हंसल्ला भाग गया मगर याक सबसे पहले मेरा और तुम्हारा दामन चलाएगी। उसका मिलना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं मिला तो हम दोनों किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। सारे इल्जाम हम दोनों पर ही आएगा।
आखिर हम दोनों ने क्या किया है हाजिम?
क्या किए? क्या मैं, तुम और मरवा हमदानी सफीन की जंग में एक साथ नहीं थे?
मगर ये बात तो सालों पुरानी है मेरे भाई।
क्या तुम कूफियों को नहीं जानते भाई अब्दुल रहमान? वो ये नहीं कहते थे कि हाजिम सफीन में माल गनीमत की लालच में शरीक हुआ था? ये अब्दुल रहमान सफीन में कम सिन था और पूरी फौज का सक्का था। उन्हें किसी की अच्छाइयों और खूबियों से कोई लगाव नहीं। वो कहते हैं अब्दुल रहमान, हाजिम और मरवा ऐसे कसम खाए हुए दोस्त थे जो सफीन में अली की सफों में खड़े थे। तो रहमान, सब ये जानते हैं कि मरवा ने मौत के वक्त वसीयत की थी कि हम उसके घर वालों और उसके अकलौते बेटे हंजला का ख्याल रखें। क्या ये बहाना काफी नहीं कि लोग ये कहें कि अब्दुल रहमान और हाजिम ने हंजला की जान बचाई है?
मरवा की वसीयत, देख रहे हो कितनी जल्दी हम अपने दोस्त को भूल गए। कुछ वही नहीं कि हम अपने आप को भी भूल बैठे हाजिम।
फलसफे मत सुनाओ भाई, इस वक्त क्या करना चाहिए? बिन हज्जाज और उसकी सिपाहियों ने दीवानवार कूफे और उसके गिर्द नवा को छानना शुरू कर दिया है। जब तक हंजला को ढूंढ नहीं लेते, रुकने वाले नहीं है।
कान खोल कर सुन लो मेरी बात,
खुद सुन लो और ध्यान रखना। अगर उबैदुल्ला के आदमी तुम्हारे पास आते हैं तो उनका खंदा पेशानी से इस्तकबाल करना।
ठीक है, ठीक है, तुम जाओ और बेफिक्र रहो।
क्या होता अगर हंजला दार पर ही लटका रह जाए और इतने अच्छे लोग इस जिल्लत में तुम मुब्तला ना होते? उनकी सिपाही ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचे।
वो तो तुम्हारा बेटा मरवान है।
क्या फर्क पड़ता है, उसका भी कोई भरोसा नहीं था। इस पुराशुभ दौर में बेटा बाप को हुक्मरानों के हाथों बेच भी सकता है।
अब यहां से जाओ हाजिम, जाओ।
अपने आप को संभालो, ये मरहम जल्दी असर दिखाएगा।
वाए हो मुझ पर, वाए हो मुझ पर कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई। आओ आसमां, कहाँ हो तुम? ऐसा हादसा रुनुमा हो गया है जो हमारी सारी जिंदगी को तबाह कर डालेगा।
कूफा हमेशा से हादसा का गढ़ रहा है और तुमने इन सब हादसा से सुसमेत फायदा उठाया है। अब ऐसा क्या हो गया जो तुम इस कदर परेशान हो?
जो वसीयत मरवा हमदानी ने मुझे की थी, सब अपने दोस्तों को हीरे जवाहरात बख्शते हैं और वो अपने बेटे हंजला की देखभाल मेरे जिम्मे छोड़ गया। पता नहीं,
पता नहीं क्या करूं कि उबैदुल्ला उसके भागने का गुनाह मेरे सर पर ना डाल दे।
तुमने रसूल खुदा और अली इब्ने अबी तालिब की वसीयत को तो नजरअंदाज कर दिया है। किसी को तुमसे ये तवक्को नहीं कि तुम अपने पड़ोसी की वसीयत पे अमल करोगे। खामखा तशवीश और इस्तराब में मत पड़ो।
तुम फिर शुरू हो गई औरत, ये बताओ पैगंबर की वसीयत से मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरता।
जो रोटी तुमने अपने बच्चों को दी है उसने क्या खूब असर दिखाया है। मरवान की हरकतों को देखकर हर गली के लोग तुम्हें दुआएं देते हैं।
तुम अपनी जुबान की जहर को खत्म करके मेरे बच्चों से कीड़े रखना छोड़ नहीं सकती। आसमा, बेलगाम घोड़े की मिसाल मत बनो जो हर रोज एक नई आवाज में हिने नाती है, समझ रही हो? घर का दरवाजा बंद कर दो और किसी को भी अपने घर में आने मत देना, खास तौर पे हानिया हंजला की बीवी को। मुमकिन है अब्दुल्ला के मुखबिर उसके तुम्हारे साथ मेलजोल को हमारी और हंजला की मिली भगत करार दे दें, समझ रही हो?
मेरे ख्याल से तुम्हें देर हो रही है, तुम्हारे बच्चों की रोटी जल रही है। क्या हो गया?
हल्ला बिन फतियान के महल्ले के मैदान में दार पे लटका दिया गया है। हुरूबे आफ्ताब तक ही मोहलत है, वरना उमर इब्ने हज्जाज जुबैदी उसे मार डालेगा।
खुदा की लानत हो उस पर जो कल तक हुसैन इब्ने अली को खत लिखता था और आज उनके साथियों पर तलवार उठा रहा है।
तारीख हमेशा से गवाह रही है कि उस जिस्म के रात दिन अलग अलग रंग के होते हैं। रात को एक रंग में सोते हैं और दूसरे दिन में किसी और रंग में सामने आते हैं।
वही जो शबस इब्ने रबी के साथ सबसे आखिरी खत लिखने वाला था और आज यही दोनों सबसे पहले फितने के हर कार्य बने हुए हैं।
इससे पहले कि देर हो जाए ये बताओ क्या करें?
परेशान मत हो, जरा हौसला रखो। हंजला बेहतरीन हो सकता है।
ये तुम क्या कह रही हो?
वो मौला हुसैन की जानिब हमारा कासिद बन सकता है।
वो तो दार पे लटका हुआ है।
दार से उतरने के बाद उसे जाना होगा क्योंकि उसकी जान भी तो खतरे में होगी।
तुम्हारा मंसूबा क्या है असमा?
लिख दो वो सब कुछ जो मौला हुसैन को कूफे के बारे में बताना चाहते हैं।
कहाँ?
क्या तो अपने शोहर को छुड़ाना नहीं चाहती? मैं जंगी सामान की तैयारी करने जा रही हूँ, तुम भी जाओ हमारी इत्तला मिलने तक।
जाओ ना कमबख्त, भू जाओ। कुछ अरसे से तुम्हारा हमसे राबता नहीं उबैद।
कुछ दिनों से मेरी माँ बीमार है, उन्हीं की खिदमत में मसरूफ रहता हूँ।
अच्छा, तीरंदाजी के मुकाबलों में भी तुम दूसरों से आगे निकल गए हो।
मेरा आप घुड़सवारी और तीरंदाजी से कोई वास्ता नहीं। जो सिक्के आपके वाली साहब से मिले हैं, छोटा सा काम शुरू किया है मैंने। नहीं, बिल में रहता हूँ जनाब।
हाँ भाई, जानता हूँ कि चूहे की तरह अपनी बिल में छुप गए हो। جو تم نے اپنا خراج ادا نہیں کیا، یہی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
بہت جلد ادا کر دوں گا، آخر میں نے ابھی تو آپ کے والد صاحب کو قسط ادا کی ہے، اس وقت تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔
ہاتھ میں کچھ نہیں ہاتھ میں کچھ نہیں،
میرا معاملہ میرے باپ سے جدا ہے۔
امیر کے زندان میں جاتے ہی تمہارے ہاتھ میں بہت کچھ آ جائے گا عبید۔
میں سچ کہہ رہا ہوں، اس وقت میں بہت مجبور ہوں۔
مجبور؟
لے چلو اسے۔
رحم کیجئے، میں دے دوں گا، رحم کیجئے، اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں۔
مروان بیٹا، مروان یہ تم کیا ظلم کر رہے ہو عوام کے ساتھ؟ اگر عبید کو لے جاؤ گے تو کون میرے بے زبان پیسوں کو واپس لوٹائے گا؟
ہمارے درمیان یہی فرق ہے بابا، تم چند بھوکے بھکاریوں سے امید لگائے رکھتے ہو اور ان سے چند کوڑیوں کی ملنے کی امید رکھتے ہو، مگر میں عبید اللہ کی تھالی میں کھاتا ہوں اور کوفے کے خزانے سے پیٹ بھرتا ہوں۔
خاموش ہو جاؤ، میری بات غور سے سنو مروان، اتنے احمق اور سر پھرے مت بنو۔
لے چلو۔
مروان تم سے بات کر رہا ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں مروان۔
ہانیہ کیسی ہے؟
بہتر ہے۔
اس کے زخم کا کیا کیا؟
مرہم لگا دیا ہے۔
میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔
کیوں؟
ہانیہ،
اس کا خون بہنا کم ہوا ہے،
یہ جگہ اس کے لیے پرام نہیں۔ مجھے ڈر ہے اسما، مجھے ڈر ہے کہ اعظم کو ہمارے کیے کی اطلاع نہ مل جائے۔
میں بھی فکر مند ہوں، مگر وہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اور کہاں لے جا سکتی تھی اسے؟
کاش پرانے راستے سے اسے ہمارے گھر لے جاتے۔
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عمر بن حجاج اور اس کے کتوں نے ہمارا راستہ روکا ہوا تھا؟
حوصلہ رکھو بہن، بہتر ہے اسے رات گھر کے مخفی راستے سے کھجور کے باغات کی طرف نکال دیں۔ ہاں
رات کی تاریکی کو پھیلنے دو، کوفیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، ان لوگوں کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔
وہی لوگ جنہوں نے کل مولا حسین کو خط لکھا تھا اور آج وہ منکر ہو گئے، تمہیں یاد ہے اسما؟
خنزلہ کہاں ہے؟
پرسکون رہو، اس کی فکر مت کرو ہانیہ، وہ یقیناً کوفے سے بھاگ چکا ہے، ورنہ اب تک ڈنکا بجانے والوں نے کوفیوں کو بہرا کر دیا ہوتا۔
ہاں صحیح کہہ رہی ہے، سچ ہے کہ کوفے میں کوئی بھی راز دیر تک نہیں چھپتا۔
حنزلہ، حازم بھروسے کے قابل نہیں، سورج ڈھلنے تک یہی چھپے رہو، ٹھیک ہے؟
جزاک اللہ،
میں ابھی آتا ہوں۔
ए घोड़ा, हंसला जरूर यही कहीं होगा। हर जगह तलाश करो, हमें उसे ढूंढ निकालना होगा। ढूंढो, ढूंढो।
तुम क्या कहते हो, कूपे के अंदर छुपा होगा या बाहर? इस पुराशोभ शहर में हर जगह नजर रखनी चाहिए। कूपे वाले सभी अंधे हैं और किसी के पास भी देखने वाली आंख नहीं है।
अमीर, अमीर, जिस घोड़े पर हंसला को भगा के ले गए थे वो तो खजूरों के बाग में था।
देख रहे हो, हम सवार की तलाश में हैं और वो उसकी सवारी की इत्तिला दे रहा है हमें।
खामोश।
मेरे घुड़सवारों ने सारा खजूर का बाग छान मारा, बादिया से भी आगे तक देख लिया, मगर हंसला के कोई आसार नहीं मिले। सोचता हूँ कि वो कैसे इतना लंबा सफर कर सकता है।
अब क्या हो गया जो मेरे बाग आ पहुँचे? ऐसे हालात में तुम्हारे पास सैर और तफरी का वक्त नहीं मिलता, आजकल मुझसे मिलने भी नहीं आते थे।
मैं तफरी के लिए नहीं आया, सैर और तफरी के लिए रूह का सुकून जरूरी है जो मेरे पास नहीं है। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ।
आओ बैठो, कुछ आराम कर लो मेरे दोस्त, तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनूंगा।
सभी जानते हैं कि तुम हंसला के बाप के वसी हो, वही जिसने मरते दम अपने बेटे की परवरिश तुम्हारे अब्दुल रहमान के हवाले की थी।
हाँ तो हंसला के फरार होने का मुझसे क्या वास्ता, मुझे तो खुद उससे नफरत है।
हंसला जब किसी मुश्किल में फंस जाए, यकीनन ऐसे हालात में वो अपने बाप के दोस्तों से मदद का तालिब होगा, और मुमकिन है कि वो लोग उसकी मदद भी कर दें।
अगर ऐसा हो जाए तो बेशक अब्दुल रहमान मुझ पर मुकदम है। वो खुद जानता है कि मैं उसके बाप की वसीयत का वफादार नहीं हूं। जब मुझे भूख लगी तो मैं किसी खुश्क रोटी की मानिंद उसे चबा गया। जो माना रकम लोगों से लेता हूं उसी पर राजी।
अब्दुल रहमान एक रहम दिल इंसान है आजिम, वो इसकी मदद जरूर करेगा। वो इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं करेगा कि जिसकी वो मदद कर रहा है वो अमीर का दुश्मन है, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम किसी मुश्किल में मुब्तला हो जाओ। हाजिम, मुझे ये पसंद नहीं कि तुम्हारी और हंसला के बाप की दोस्ती अमीर के हुजूर तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
कोई शक नहीं है मैं ऐसा ही करूंगा उमर, मगर मेरे दोस्त तुम खुद भी खतरे से बाहर नहीं हो। मैं सबसे बेहतर अंदाज में ये जानता हूं कि तुम हुसैन इब्न अली की बैत करने वालों में सबसे आखिरी फर्द थे। इस बात से अमीर और दूसरों का वाकिफ होना तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद नहीं है उमर, अब्दुल रहमान के पास जाने से भी काम मजीद खराब हो जाए, क्योंकि मुमकिन है फिर वो अमीर को कह दे कि तुम्हारा खत हुसैन इब्न अली के पास ले गया था।
ये कल के वाकयात को याद करने का वक्त नहीं, आज के लिए कोई सोच विचार करनी होगी।
आज का कोई तसव्वुर ही नहीं है मेरे दोस्त, बेहतर होगा कल के लिए कुछ सोच लो।
अगर हंजला ना मिले तो कोई कल भी नहीं होगा। अमीर ने हुक्म दिया है कि उसे और उन तीन सवारों को जिन्होंने उसे बचाया था कल तक कूफे के मैदान में दौड़ पे लटका दूं।
उम्मीद करता हूं कि उन्हें ढूंढ निकालोगे।
जरूर ढूंढ निकालूंगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि मेरी कहीं पहचान ना हो। मेरे बहुत से दोस्त हैं। बेहतर होगा कि तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो।
ठीक कहते हो। गली कूचों में मेरी इतनी दोस्तियां नहीं। अब जबकि थोड़ी सी जगह अमीर की बारगाह में रखता हूं, बेहतर होगा कि उसकी हिफाजत की फिक्र की जाए।
खुले लफ्जों में बात करो मक्कार बूढ़े।
तुम्हें इस तरह घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा डाल देते हैं। तुम मेरी और हंजला के बाप की दरीना दोस्ती को भूल जाओ और मैं हुसैन इब्न अली की जानिब तुम्हारे खत को।
अब्दुल रहमान का क्या? वो अगर फंस गया तो मेरा नाम जरूर लेगा।
वो काफी अरसे से तरद्दुद का शिकार है। अपने कल और आज के दरमियान हैरतजदा खड़ा है। मैं उसे समझा चुका हूँ, तुम बेफिक्र रहो।
कैसे बेफिक्र रहूं जबकि कल का डरावना ख्वाब अब तक मेरा पीछा कर रहा है। सिर्फ रात की तारीकी मेरी हम सफर बन सकती है।
रात से ज्यादा तारीख तो वो किस्मत है जो हमारा गिरेबान नहीं छोड़ती।
खलीफा जमीन पर खुदा का साया होता है। लोगों जान लो और आगाह रहो। मैंने अपने बाप से सुना है जो मिजहजियों का बुजुर्ग है, रसूल अल्लाह से नकल करते हैं जो कोई मर जाए जबकि किसी खलीफा की बैत उसके जिम्मे ना हो, वो जहालत की मौत मरा है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? जानते हैं? मतलब यहूद और नसारा की तरह मरा है। खामोश। लोगों ये जान लो, जान लो, आज के दौर में जान की हिफाजत हर चीज से ज्यादा वाजिब है। अपनी और अपने घर वालों की जान की हिफाजत कीजिए, क्योंकि शाम की फौज रास्ते में है। नाफरमानी की सूरत में अपने आप और अपने कबीले को बर्बाद कर बैठेंगे। ऐ लोगों, आप सब आज शहर की बड़ी मस्जिद में आइए और इब्ने ज़ियाद के पीछे नमाज पढ़ लीजिए। अगर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कोई सवाब मिला तो वो आपके लिए लिखा जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता कोई गुनाह मिला वो उसके लिए लिखा जाएगा।
ध्यान से जाओ, उबैदुल्लाह के जासूसों की आंखें और कान बहुत तेज होते हैं।
अब्दुल रहमान, तुम क्या करोगे? मेरे साथ मौला हुसैन के पास चलोगे? तुम्हें क्या हो गया है भाई? हमें आज लाजमन अली इब्न अबी तालिब के बेटे की रकाब में होना चाहिए। हमें उबैदुल्लाह को अपनी मक्कारियों के जरिए मुस्लिम इब्न अकील और हनी इब्न उरवा के कयाम को अंधेरों में छुपाने नहीं देना चाहिए।
जो खतूत का सैलाब मैंने मौला हुसैन के पास भेजा था वो मुझे बखूबी याद है, मगर अफसोस अफसोस के कूफे वाले जमाने के खामोश तरीन लोग हैं जो अपनी जहालत की गफलत में हैं, कम सिन बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। अफसोस
افسوس کہ میں تمہارے والد کی وصیت پر عمل نہیں کر سکا.
مت رو عبد الرحمن، رات کی تاریکی صبح کی روشنی میں ضرور بدلے گی. میں صرف ہانیہ کے لیے فکر مند ہوں.
اس کی فکر مت کرو، میں اسے اسی گھر کے خفیہ راستے سے تمہاری جانب بھیج دوں گا.
دوبارہ ملنے کی امید رکھتا ہوں.
مولا حسین کوفے والوں کے حالات اور ارادوں سے واقف ہوں گے، لیکن ہمیں فرزند رسول کو کوفہ کی جانب نہیں آنے دینا چاہیے.
بے شک مولا حسین ہر چیز سے آگاہ ہیں، کل کے مستقبل کی بھی خبر رکھتے ہیں.
ٹھیک ہے، مگر ہمیں کوئی ایسا قاصد چاہیے جو ہمارا پیغام ان تک پہنچائے.
مگر ہم کیا کریں، نہ مسلم ابن عقیل ہے نہ ہانی بن عروہ، کوئی بھی تو نہیں بچا. مختار بھی زندان میں ہے اور کوئی نہیں رہا.
کاش عبد الرحمان ہمارا قاصد بن جاتا تو کتنا اچھا ہوتا.
عبد الرحمان اپنے اور کوفیوں کے خطوط کے مابین حیران و سرگردہ ہے، تم خود مجھ سے بہتر جانتی ہو.
ابھی تک دایا کی تلاش میں ہو؟ حق بنتا ہے، آج کل کوفہ حاملہ ہے اور ہمارے علاوہ کوئی دایا نہیں ہے. پریشان مت ہو، وہ اپنے بچے کو امیر کے محل میں پیدا کرے گی، ایسے کہ اس کے رونے کی آوازیں تمام کوفے والے سنیں گے.
تم کتوں کی سونگھنے کی حس کار آمد رہی یا گھر کے مخبروں نے اپنا کام پورا کیا ہے؟
با وفا کتے ہمیشہ اپنا کام بخوبی نبھاتے ہیں، چاہے ہوش میں ہو یا مدوشی میں.
وہی ہے جس نے وہ روٹی کھائی تھی اور مہمان کی حرمت کا خیال نہیں رکھا. دونوں عالم کی پھٹکار برسے اس پر کہ وہ ان کتوں میں سے ہیں جو وفا بھی نہیں رکھتے.
گرفتار کر لو اسے.
خدا کا خوف کرو بغیر تو، مت لے جاؤ اسے. خانیہ
کیا روک تھام ہے بھائی،
چھوڑ دو اسے، چھوڑو. خانیہ
رک جاؤ. جو زخم जख्म तुम्हारे पांव पर है वो इतना पुराना नहीं हुआ होगा। अगर मैं इसे देख लूं तो इसका मरहम भी बता सकता हूं। चलो यहां से, चलो यहां से।
उस औरत का क्या नाम बताया तुम?
हानिया, हंजरा की बीवी।
तुम्हारे ख्याल से वो औरत अपने शौहर का ठिकाना हमें नहीं बता सकती थी?
जी हाँ, बिल्कुल बता सकती थी।
क्या तुम तबेले में पैदा नहीं हुए?
हाँ, जैसा अमीर कहें।
क्या तुमने नौजवानी में जानवरों का झूठा और गधे का फुजला नहीं खाया?
जी हाँ, खाया है, खाया है।
तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उस हसीना के लुआबे दहन ने जो हर झूमने वाले को मस्त कर देता है तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया?
अमीर, अमीर,
अब हंजला को कैसे तलाश करो? तुम्हारे पास तो उसकी कोई निशानी भी नहीं।
अमीर, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे तलाश कर लूंगा, कसम खाता हूँ।
खामोश झूठे, अगर कल तक हंजला को नहीं पाया तो तुम्हारे मुंह में जानवरों का इतना फुजला डालूंगा कि मर जाओगे। वो घर में था और तुम उसे मैखाने में ढूंढ रहे, जाहिल कहीं का अहमक।
अमीर, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, मैं हंजला को पत्थर के नीचे से भी ढूंढ निकालूंगा, मुझ पे भरोसा कीजिए अमीर।
सफेन के सक्का को क्या हो गया है जो अपने बच्चे के रोने की आवाज भी नहीं सुनता?
सफेन का सक्का, सफेन का सक्का। अब्दुल रहमान की आंखें तो रात की मानिंद तारीख हो चुकी हैं, तो फिर सुनने वाले कान आखिर कहां से लाए?
सफ़ेन का मर्द हमेशा सुनने और देखने वाला होता था, अब क्या हो गया जो इस कदर बेताब है?
आखिर क्यों बेताब न हो अपनी बेबसी पर, इतने मुंह खुले जख्मों पर?
तुम हानिया की मौत पर बेताब हो या अपने हाल पर कि उबैदुल्ला की मकारी के असीज न हो जाओ?
मैं हंजला के हाल पर रो रहा हूँ जो खजूर के बागात में मुंतजिर है कि उसकी बीवी को उस तक पहुंचाऊं। हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि इंसान का कासिद बन, चाहे एक ही बार के लिए, न कि इन बेगैरतों के खुदूत का कासिद।
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हंजला हमारे घर में छुपा हुआ है?
क्या तुमने बताया कि हानिया उस जहन्नम घर में छुपी है?
जो शख्स सुबह से रात तक मकोड़ों से खेल रहा होता है वो आखिर क्या कर लेता?
कुछ नहीं, वाकई कुछ नहीं। दो अजीजों का दाग, जिनके वजूद कूफे की अजनबी गलियों में जहालत की रस्सियों में जकड़े हुए हैं, मैं झेल रहा हूं। वो मेरे हाथों में मौला हुसैन की अमानत थे, आखिर मैंने कैसे खुद को इस जाल से नहीं छुड़ाया जबकि मुस्लिम इब्ने अकील की आवाज और हानी इब्ने उर्वा की मुस्कुराहट मेरे साथ थी। मैं मौला हुसैन के लिए इतने गामों का पैगाम रसा कैसे बनता?
तुम इस जिगर खराश खबर को हंजला तक कैसे पहुंचाना चाहते हो जिससे खजूर के बागात जल ना जाए?
हमेशा से ऐसा कासिद बनना चाहता था जो कारवां से दूर न रह जाए। कारवां से दूर न रह जाऊं, मगर रह गया साजिदा, मैं रह गया।
हमें हर हाल में उसे बचाना होगा, अगर हंजला मारा गया तो हानिया नहीं रह सकेगी।
हानिया ने काफी देर कर दी, उसे अब तक आ जाना चाहिए था।
सिपाहियों ने हर जगह मुहासरा किया हुआ है, यकीनन रास्ता ढूंढ रही होगी। उमर इब्ने हजाज के सिपाही हर तरफ फैले हुए हैं।
लानत है उस पर कि अपने कल को भुला बैठा है।
काश मैंने ऐसे हालात में आंख ना खोली होती कि मकारियों की गवाह रहूं। काश मैं अपने मौला अली के दौर में पैदा हुई होती। मैं क्या करूं, बाखुदा ऐसे हालात से बेजार हूं।
कल और आज के माबेन कोई फर्क नहीं, सूरज की रोशनी भी वही और हवाएं भी वही, दोनों पैदल पे चलते हैं। हम कल होते या आज, इनकी मकारियों में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग ऐसे ही हैं। अहले कूफा से वफादारी की उम्मीद रखना ऐसा ही है जैसे अपनी गर्दन और अपनी जान को इनके हाथों में दे देना ताकि जैसा चाहे सुलूक करें। हम किसी भी दौर की बात करें, इनकी मकारियां उरूज पर ही रहती हैं, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ और चेहरे से कुछ, बिल्कुल नाकाबले एतबार। हर दौर में आले रसूल से बेवफाई की है इन्होंने। क्या यही लोग मदीने की गलियों में रसूलल्लाह के साथ नहीं थे जिन्होंने मौला अली को तन्हा छोड़ दिया, और मौला अली के साथ कूफे की गलियों में थे और मौला हुसैन का इनकार कर दिया?
आले अली हमेशा से तन्हा रहे हैं, चाहे दार पर हों या खाक पर, चाहे मस्जिद में हों या घर में, बिल्कुल हंजला की तरह जो इस शहर में दार पर है।
इस हाल में हंजला की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। मुस्लिम कूफे में मारे गए और अब हंजला मजमे में होते हुए उनसे ज्यादा तन्हा हैं।
مسلم کو مروانے والے کوفے پر لعنت ہو جو اب دوسرے عزیز کی موت کا منتظر ہے۔
اس بار یہ نہیں ہونے دیں گے، اس بار کوفیوں کو حیران کر دیں گے اور کوفے کو حیرت و پریشانی، نیند اور بیداری کے بیچ پھنسا دیں گے۔
میرا دل گھبرا رہا ہے، ہانیہ ابھی تک نہیں آئی۔
چلو تیاری کرتے ہیں، وہ آ جائے گی۔ اس کے شوہر کو چھڑاتے ہی اسے کوفے سے بھگا دیں گے۔
بہتر ہوگا کہ ہانیہ بھی یہاں سے چلی جائے، اگر وہ رہی تو اس کی جان خطرے میں ہے۔
ہاں ایسا ہی کریں گے بہن۔
کیا بات ہے جو اتنی رات گئے دروازہ بجا رہے ہو عبد الرحمن؟
میں تم سے ایک راز بیان کرنا چاہتا ہوں۔
راز؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟
میں نے ان تمام لوگوں کے نام ابو عامر کے کھجوروں کے باغ میں ایک پیڑ کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ ان پراشوب حالات میں مجھے ڈر ہے کہ عبید اللہ ان لوگوں کے نام معلوم کرنے کے لیے میرے پاس ضرور آئے گا۔
وہ کیسے جانے کہ تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے؟
تم کتنے سیدھے ہو، میں قاصد اور پیغام رسا ہوں، وہ لازمن میری کھوج میں آئے گا۔
تو تم خود ہی عبید اللہ کو ان لوگوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ خدمت بھی ہو جائے گی اور کچھ انعام بھی پالو گے۔
ڈرتا ہوں کہ اب تک ان کے نام نہ بتانے کے جرم میں وہ مجھے قید کر لے گا۔
تو پھر اب تم کیا کرنا چاہتے؟
میں چاہتا ہوں ان سب ناموں کو آج رات جلا ڈالوں۔ تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلو۔ ان پراشوب حالات میں کوفے سے اکیلے نکلنا خطرناک ہے، عبید اللہ کے سپاہی تمہیں جانتے ہیں۔
3000 دینار، کیونکہ اس میں میری جان کا خطرہ ہے۔
ٹھیک ہے، مگر اس شرط پہ کہ ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہ جائے۔
ٹھیک ہے، اب کچھ دیر میں وہاں چلیں گے، اب تم جاؤ یہاں سے، تم نے اس گلی کے سناٹے کو توڑ ڈالا ہے۔
مکار بول، جو خبر تم لائے ہو کیا وہ اتنی قیمتی تھی کہ تم نے میری نیند اڑا دی؟
جی میرے آقا۔
تو اپنا منہ کھولو۔
عبد الرحمن مجھ سے چاہتا ہے کہ اگلے چند لمحوں میں میں اس کے ساتھ ان لوگوں کے نام جلانے جاؤں جنہوں نے حسین کو خط لکھے تھے۔
لیکن کہاں؟
ابو عامر کے کھجوروں کے باغ میں۔
تم کیوں جاؤ گے؟
عامر کے سپاہی مجھ پہ شک نہ کریں گے۔
اور اس کے بدلے میں کیا لوگے؟
3000 دینار۔
और हमसे इस खिदमत के बदले?
मेरे आका, जो भी आपका लुत्फ करम हो, मगर इजाजत दीजिए कि मैं उससे जगह दरियाब कर लूं, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी खयानत के बारे में समझे।
तो तुम दोनों जगह से फायदा उठाना चाहते हो? गौर से सुनो, वो कुतूत और मोहरें इतनी अहम हैं कि उनसे हुसैन से मुकाबले की सरनविश्त को इसी कूफे में रोशन किया जा सकता है।
मेरे आका, मुझ पर अपना लुत्फ और करम रखिए।
इतना काफी है कि तुम्हें कुत्तों की तरह कत्ल नहीं किया। अगर मरमान की खिदमत गुजारी न होती तो तुम्हें और तुम्हारे घर को आग लगा देता। तुम्हें कैसे नहीं पता था कि तुम्हारे अपने ही घर में हानियां छुपी हुई है?
अमीर कहना क्या चाहते हैं?
तुम्हारे सूंघने की ही सब किसी काम की नहीं रही, बूढ़े कुत्ते।
मरवान, हानिया, ये कैसे हो सकता है?
सूरज निकलेगा तो अमीर आसमान के फाते होंगे। अमीर का ये सुकूत किस बात की दलील है? बारीक बिनी और जराफत अमीर के खामोश चेहरे पर मौजूद है, ये तो मुझे भी मालूम है, मगर अमीर की जान के लिए फिक्रमंद हूँ। मुझे डर है कि ये एक हीला हो और अमीर को खजूर के बागात में बुलाकर फांस लिया जाए। कूफे में हर रोज एक ताजा खबर उठती है, हादसे तो जमाने के भंवर होते हैं। मैं नहीं चाहती कि सुबह सवेरे दारुल इमारा किसी खौफनाक खबर से लर्ज उठे।
फितने की जड़ ही काट देनी चाहिए। अब्दुल रहमान का घर फितने का गढ़ है, वीरान हो जाना चाहिए।
अमीर, तमाम सिपाही अबू आमिर के बाग पर हमला आवर होने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ अब्दुल रहमान के आने की खबर के मुंतजिर हैं।
तुम्हें पहले से ज्यादा होशियार होना चाहिए उमर इब्न हज्जाज।
सिर्फ अब्दुल रहमान के आने की देर है अमीर, काम तमाम कर दूंगा।
हंजला की तरह कहीं वो भी तुम्हारे हाथ से निकल न जाए।
जी नहीं अमीर, अब्दुल रहमान को आज ही रात कत्ल कर दूंगा।
मगर मुझे अब्दुल रहमान जिंदा चाहिए।
जो हुक्म अमीर।
और उन तमाम लोगों के नाम जिन्होंने हुसैन को खत लिखे थे।
मैं जानता हूं तुम्हारा नाम भी उनके दरमियान है।
अगर हुसैन को मधु करने वालों के नाम ला सको तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा।
अब्दुल रहमान वही शख्स है जो हमें उनके नाम दे सकता है, समझ रहे हो ना?
जो आप चाहें अमीर।
बेहतर होगा कि हंजला को भूल जाओ और अब्दुल रहमान की फिक्र करो।
फिलहाल वो मेरे लिए ज्यादा अहम।
हुसैन से मुकाबला करने की सरनविश्त उसके हाथ में है,
मुझे वो जिंदा चाहिए।
जैसा हुक्म अमीर। मेरे आका, क्या आप खुद अबू आमिर के बाग नहीं चलेंगे?
ये लोग यहां क्या कर रहे हैं?
कहीं हमारी तलाश में तो नहीं आ रहे?
घबराओ मत, मैं थोड़ा आगे जाता हूं ताकि मुझे देखकर अपना रास्ता बदल ले। तुम जल्दी अपना काम पूरा करो। बैदुल्लाह, दुरूद हो उमर पर, खुश आमदीद। ये तो बैदुल्लाह नहीं है।
मैं घोड़े पे भागूंगा ताकि तुम सुकून से निकल सको।
लेकिन अगर एक साथ
मेरे भाग नहीं, सिपाही मेरा पीछा करेंगे।
हम साथ रहे तो
जो कहा है वो करो।
हानिया की क्या खबर है?
कूफे का कासिद हमेशा की तरह शर्मिंदा है।
तुम्हारे सीने में क्या छुपा है भाई? क्या हुआ है जो इस कदर परेशान हो?
जिसने तुम्हें दार से निजात दिलाई वो हानिया थी।
क्या कहना चाहते हो? हानिया के साथ क्या हुआ है?
दार पे लटका दो ताकि कीड़ों की खुराक बन जाए। ले जाओ इसे।
जनाब अमीर, या अमीर, माफ कीजिए अमीर, रहम कीजिए।
मरवान, लाना तो तुझ पर, लाना तो तुझ पर मरवान।
अमीर, माफ कीजिए, माफ कीजिए अमीर।
अब्दुल रहमान की तलाश में रहो, समझ रहे हो ना मेरी बात?
हंजला ने मेरी आंखों से तरद्दुद को मिटा दिया। खुदा करे कि वो जल्द अपने आप को हम तक पहुंचा दे।
सफेन का सक्का आज करबला को चला है। क्या ही अच्छा हो कि सूरज की तरह चमके।
तुमने मेरी सियाह जान में उम्मीद का दरीचा बना दिया। हमेशा मेरी महबूब रहोगी साजदा। अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले कर दो।
खुशखबरी लेकर आना अब्दुल रहमान, दोबारा मिलने की उम्मीद करती हूँ।
इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे।
अगर यकीन के शोले इंसान की जान में भड़क उठें, तो तमाम तर्दीदों, वसवसों और हैरानगियों को जलाकर राख कर सकते हैं। आपकी जानिब हमने खत लिखे और इल्तिमास की कि अपनी विलायत का हाथ हमारे गुनाहगार सरों पर फेर दें। हमने चाहा कि आप हमारे शहर आ जाएं ताकि इस दियार के लोग भी एक बार फिर आपके बाबा के बाद नूर का स्याही और तबाही के सामने बगैर किसी हिजाब के खड़े हो जाने को अपनी आंखों से देख सकें। हमने चाहा कि ऐसे पाक सालिक बन जाएं कि आप हमारी कश्ती निजात हों तूफानी हालात में और हिदायत का चिराग हूँ अंधेरों के इश्तिहाम के वक्त।
जानती हूँ कि आप बखूबी जानते हैं, आप बखूबी जानते हैं कि किस तरह खत हमारे हाथों में ही रह गया और आपकी मोहब्बत हमारे सीनों में, और सिर्फ हमारे घुटन ही रही जो आंखों के जरिए अपनी राह बनाकर जारी हो गए। आप बखूबी जानते हैं कि हम क्यों अपने खतूत आप तक न भेज सके, और आप जानते हैं कि इस बार इन साजिशों की नफ्सा नफ्सी और घुटन में क्या कहना चाहती हूँ? मैं कहना चाहती हूँ कि अब हमारे शहर की सिमत मत आइएगा, क्योंकि इस कौम के खवास और बड़ों ने खौफ खुदा के बजाय बेहसियत बंदों का खौफ रखा और आवाम को हैरान और सरगर्दा छोड़ दिया। वाए हो ऐसे खवास और बुजुर्गान कौम पर, और वाए हो इस कौम की आवाम पर जिन्होंने ऐसे बेगैरतों को कौम के बड़ों की हैसियत से चुना है। बखूबी जानती हूँ कि आपने फरमाया था कि वो लोग दुनिया के बंदे हैं और दीन सिर्फ उनकी जबान का खिलौना है, सिर्फ जब तक दीन के ख्वाह है कि उनकी मुआश उससे चलती रहे, और जब इम्तिहान का वक्त आता है तो दीनदारों की तादाद कम हो जाती है। खुदाया यकीन के शोलों को हमारी जानों में इस तरह से भड़का दे कि हमारी बसीरत हमारी तलवारों पर हुकूमत करे और हमारी अक्लें मारिफत की गहराइयों में रमा हो जाए।
سنگ باشه نباید اون کسی که بیگناهه اسیر محبس نیرنگ باشه اسیر محبس نیرنگ باشه
آزادی برو سیمرغ عاشق